ये आकाशवाणी है। अब आप जया भारती से समाचार सुनिए। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने मनामा संवाद में पश्चिम एशिया के बारे में भारत की व्यापक रणनीति प्रस्तुत की है। उन्होंने कहा कि भारत के आर्थिक और रणनीतिक हितों में पश्चिम एशिया की भूमिका महत्वपूर्ण है। वे बहरीन की राजधानी मनामा में आयोजित इस संवाद के पूर्ण सत्र को संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि भारत का खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य देशों ईरान और इराक के साथ वार्षिक व्यापार 170 से 180 अरब डॉलर का, जबकि भूमध्य सागर के देशों के साथ 80 से 90 अरब डॉलर का है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में भारतीय मूल के लगभग 1 करोड़ और भूमध्य सागर के देशों में लगभग 50 लाख भारतवंशी हैं, जो भारत और पश्चिम एशिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि देश की लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के इस दशक के अंत तक दोगुना होने की उम्मीद है और इससे पश्चिम एशिया के साथ भारत की घनिष्ठता और बढ़ेगी। विदेश मंत्री ने गजा, लेबनान और सीरिया सहित इस क्षेत्र में जारी संघर्षों की भी चर्चा की। पूर्ण सत्र के दौरान चेक गणराज्य के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार टोमास पोजार और बहरीन के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल आतिब बिन राशिद अल ज़ैनी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। गृहमंत्री अमित शाह ने देश की सीमा की सुरक्षा, घुसपैठ रोकने और वामपंथी उग्रवाद से निपटने में सीमा सुरक्षा बल की भूमिका की सराहना की है। गृहमंत्री ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल पिछले 6 दशकों से देश में सीमा सुरक्षा को सुदृढ़ कर रही है। श्री शाह ने सीमा सुरक्षा बल के 60वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज जोधपुर में कहा कि वर्ष 1965 से देश की पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं को सुरक्षित रखने में सीमा सुरक्षा बल ने उत्कृष्ट कार्य किया है। श्री अमित शाह ने कहा कि भारत सरकार ने सीमा पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया है और इसके लिए हर वर्ष बजट में विशेष प्रावधान किया जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सीमा पर स्थित गांवों के लिए जीवंत ग्राम योजना की शुरुआत की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से रूस की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान वे मॉस्को में रूस के रक्षा मंत्री आंद्रे बेलेसोव के साथ सेना और सैन्य तकनीकी सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की 21वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। दोनों नेता सैन्य और औद्योगिक सहयोग सहित दोनों देशों के रक्षा संबंधों की समीक्षा करेंगे। परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। रक्षा मंत्री कल कालिनिनग्राद में यांत्रा शिपयार्ड में भारतीय नौसेना के नवीनतम मिसाइल फ्रिगेट विध्वंसक आईएनएस तुसील का जलावतरण भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और हरियाणा के दौरे पर जाएंगे। श्री मोदी जयपुर में राजस्थान वैश्विक निवेश सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री जयपुर के प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र में आयोजित 3 दिन के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित करेंगे। सम्मेलन के पहले 30 लाख करोड़ रूपये मूल्य के निवेश प्रस्तावों के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। सम्मेलन में 32 देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। इसमें 70 प्रतिनिधि भागीदार देशों के हैं। प्रधानमंत्री ही हरियाणा के पानीपत में बीमा सखी योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना का लक्ष्य 18 से 70 वर्ष की आयु की महिलाओं का सशक्तिकरण करना है। प्रधानमंत्री की 13 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की यात्रा से पहले आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा की। श्री वैष्णव ने प्रयागराज के 5 रेलवे स्टेशनों का निरीक्षण किया। सीरिया में विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया है। मीडिया के अनुसार राष्ट्रपति बशर अल असद आज देश छोड़कर चले गए हैं। दमिश्क में भारतीय दूतावास सक्रिय है और वहां भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए उपलब्ध है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि दूतावास सभी भारतीय नागरिकों के संपर्क में है और वे सुरक्षित हैं। पंजाब के प्रदर्शनकारी किसानों ने आज दिल्ली कूच करने का अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। किसान नेता बैठक करने के बाद अपनी अगली योजना के बारे में निर्णय लेंगे। सिंगापुर में विश्व शतरंज चैंपियनशिप में 11वीं बाजी में भारत के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने मौजूदा विश्व चैंपियन चीन के डिंगलिजेन को हराकर चैंपियनशिप में 6-5 से बढ़त बना ली है। मैच की 29वीं चाल के बाद डिंगलिजेन ने हार स्वीकार कर ली। इससे पहले कल दोनों के बीच 10वीं बाजी भी ड्रॉ रही। चैंपियनशिप में कुल 14 दौर की बाजियां खेली जानी है। लिजेन ने पहला दौर की बाजी जीती थी, जबकि 18 वर्षीय गुकेश ने तीसरे दौर में जीत दर्ज की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।